एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी दूसरी साथी इस ज्ञान यात्रा में आपके साथ।
और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में, चार्ल्स ड्वीक की द पावर ऑफ हैबिट, मतलब आदत की शक्ति।
जी हाँ, ये वो किताब है जो हमें समझाती है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कि हम उन्हें अपनी मर्जी से बदल कैसे सकते हैं।
बिल्कुल, और ये आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हम दिन भर में कितने ही काम करते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, बिना सोचे समझे जैसे ऑटो पायलट पर चल रहे हूँ। सुबह उठने से लेकर ब्रश करना, चाय पीना, ऑफिस जाना।
हाँ, और फिर ऑफिस के काम, घर वापस आना, बहुत कुछ तो बस होता जाता है।
एग्जैक्टली, और ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी। ये किताब हमें उस ऑटो पायलट को समझने और उसे क्या कहते हैं रीप्रोग्राम करने की एक तरह से चाबी देती है।
सही कहा, आजकल ध्यान भटकना तो वैसे ही बहुत आसान है।
बिल्कुल, तो ऐसे में अपनी आदतों को समझना और उन पर थोड़ा नियंत्रण पाना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
तो चलिए सबसे पहले लेखक से मिलते हैं, चार्ल्स ड्वीक। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं है।
हाँ, ये बात मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। ड्वीक असल में एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्कर, इन सब बड़े नामों के लिए लिखते रहे हैं।
अच्छा, तो पत्रकारिता का बैकग्राउंड है इनका।
जी, और यही चीज उन्हें एक अलग नजरिया देती है। वो क्या करते हैं कि मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च या बिजनेस केस स्टडीज को लेते हैं।
हाँ।
और उन्हें ऐसी दिलचस्प कहानियों में बुन देते हैं जिन्हें हम जैसे आम लोग आसानी से समझ सकें और अपनी जिंदगी से जोड़ सकें।
मतलब वो लैब में जाकर चूहे पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
नहीं,
बल्कि वो उन प्रयोगों के नतीजों को कंपनियों की स्ट्रेटजी को और लोगों के अनुभवों को जोड़कर एक बड़ी समझने लायक तस्वीर बनाते हैं।
बिल्कुल सही, वो एक तरह से एकेडमिक दुनिया के जो फाइंडिंग्स हैं और जो असल जिंदगी के एप्लीकेशंस हैं उनके बीच एक पुल का काम करते हैं।
ये तो बहुत बढ़िया अप्रोच है। तो अब आते हैं किताब के मेन आइडिया पर, ये किताब आखिर है किस बारे में?
देखिए, ये किताब मूल रूप से बदलाव के बारे में है, चेंज। चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी में हो, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर पूरे समाज में। ड्वीक का मेन तर्क ये है कि आदतें हमारी जिंदगी का वो अनदेखा ढांचा है, वो इनविजिबल आर्किटेक्चर, जो चुपचाप हमारे फैसलों और व्यवहार को दिशा देती हैं।
अनदेखा ढांचा, ये अच्छा कहा, मतलब हमें पता भी नहीं चलता और वो काम कर रही होती हैं।
एग्जैक्टली, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि ये ढांचा बदला जा सकता है। किताब का जो दिल है वो ये समझाता है कि आदतें काम कैसे करती हैं।
हाँ, वो हैबिट लूप वाली बात।
जी, ड्वीक बताते हैं कि ज्यादातर आदतें एक तीन स्टेप लूप में चलती हैं, हैबिट लूप। अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम उसे हैक कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
तो ये किताब असल में यही सवाल पूछती है, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और अगर बदलना चाहें तो कैसे।
बिल्कुल, और ये हमें दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की छोटी सी दुनिया से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की रणनीतियों और यहां तक कि बड़े सामाजिक आंदोलनों तक ले जाती है।
वाह,
और दिखाती है कि आदत का ये जो मूल सिद्धांत है, ये फंडा, ये हर जगह काम करता है। तो खोले इस लूप को थोड़ा।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये हैबिट लूप आखिर है क्या चीज, बताइए जरा।
ये असल में काफी सरल है पर बहुत पावरफुल। ड्वीक MIT की रिसर्च का हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि हर आदत के तीन हिस्से होते हैं।
तीन हिस्से, ठीक है।
हाँ, पहला है संकेत या क्यू। ये वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डालता है और बताता है कि भाई अब फला आदत चलानी है।
अच्छा, ट्रिगर ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कहाँ?
कुछ भी, कोई खास समय जैसे शाम के 4 बजे, कोई जगह, ऑफिस की कैंटीन, कोई एहसास जैसे बोरियत या तनाव, कोई दूसरा इंसान, या फिर ठीक पहले किया गया कोई काम, कुछ भी।
ठीक है, तो ये हुआ पहला स्टेप, संकेत।
दूसरा है व्यवहार या रूटीन। ये वो असल काम है जो हम करते हैं। ये शारीरिक हो सकता है, जैसे सिगरेट जलाना
या फोन उठाकर सोशल मीडिया देखना।
हाँ बिल्कुल, या मानसिक भी हो सकता है, जैसे किसी मुश्किल काम के बारे में सोचना ही बंद कर देना, या फिर भावनात्मक, जैसे तनाव होने पर कुछ मीठा खा लेना।
अच्छा, और तीसरा?
तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है इनाम या रिवॉर्ड। ये वो फायदा है, वो संतुष्टि है जो हमें उस व्यवहार के बाद मिलती है।
अच्छा,
और यही इनाम हमारे दिमाग को सिखाता है कि भाई ये वाला जो लूप है ना, संकेत व्यवहार इनाम, ये याद रखने लायक है, इसे दोबारा करना फायदेमंद रहेगा।
समझ गया। तो संकेत मिला, हमने कुछ किया व्यवहार, और फिर कुछ अच्छा महसूस हुआ इनाम, और ये बार बार करने से आदत पक्की हो जाती है।
बिल्कुल। किताब में यूजीन पॉली का एक बड़ा ही मार्मिक उदाहरण है। उनकी याददाश्त एक बीमारी की वजह से चली गई थी।
हाँ, मैंने पढ़ा था।
लेकिन उनकी आदतें बरकरार थीं। वो रोज सुबह टहलने निकल जाते थे, घर का रास्ता भी पहचानते थे, जबकि उन्हें ये याद नहीं रहता था कि वो कहाँ रहते हैं या वो टहलने क्यों निकले हैं।
कमाल है, ये दिखाता है कि आदतें दिमाग के कितने गहरे हिस्से में, वो जो बेसल गैंग्लिया होता है,
बेसल गैंग्लिया,
उसमें जाके बस जाती हैं। ये हमारी चेतन सोच से भी परे चली जाती हैं।
सही कहा। लेकिन ड्यूहिक कहते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है जो इस लूप को चलाती है, और वो है लालसा, क्रेविंग।
लालसा मतलब?
मतलब सिर्फ संकेत व्यवहार और इनाम से पूरी बात नहीं बनती। इस लूप का असली इंजन है उस इनाम की प्रत्याशा, एंटिसिपेशन, उसे पाने की जो तीव्र इच्छा होती है ना।
अच्छा, मतलब इनाम मिलने से पहले ही उसकी उम्मीद या तलब होना।
एग्जैक्टली। जब हमारा दिमाग इनाम का अंदाजा लगाने लगता है, उसे एंटिसिपेट करने लगता है, तभी जाकर वो आदत पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनती है।
इसका कोई उदाहरण है किताब में?
हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का। पुराने जमाने में विज्ञापन बनाने वाले थे क्लॉड हॉपकिंस। उन्होंने दांतों पर जमी मैल संकेत हटाकर खूबसूरत मुस्कान इनाम का वादा तो किया,
हाँ वो तो सब करते हैं,
लेकिन उनकी असली ट्रिक थी टूथपेस्ट में कुछ ऐसा मिलाना जिससे ब्रश करते वक्त मुंह में हल्की सी झंझनाहट या सनसनाहट, टिंगल महसूस हो।
अच्छा, उसका क्या फायदा?
फायदा ये हुआ कि लोगों को उस झंझनाहट की लालसा होने लगी। वो झंझनाहट उन्हें सफाई का एहसास दिलाती थी, भले ही असल में सफाई से उसका कोई सीधा लेना देना हो या ना हो।
अरे वाह।
और यही लालसा थी जो लोगों को रोज सुबह उठकर ब्रश करने पर मजबूर करती थी। उन्हें वो साफ वाली फीलिंग चाहिए थी।
ये तो कमाल की बात है, मतलब लालसा ही असली ड्राइवर है। तो अगर आदतें इतनी गहरी हैं और लालसा उन्हें चलाती है, तो क्या हम सच में उन्हें बदल सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता?
यहीं पे डोहेग लाते हैं आदत बदलने का सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, और ये शायद किताब का सबसे प्रैक्टिकल और उम्मीद जगाने वाला हिस्सा है।
सुनहरा नियम, बताइए क्या है?
नियम सुनने में बहुत सरल है पर गहरा है। वो कहते हैं, आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, उसे सिर्फ बदल सकते हैं।
मिटा नहीं सकते, बदल सकते हैं, मतलब?
मतलब ये कि आदत का जो न्यूरल पाथवे दिमाग में बन गया है वो हमेशा रहेगा। कोशिश ये नहीं करनी कि उससे लड़ा जाए, बल्कि ये कि उसे एक नई बेहतर दिशा दी जाए।
कैसे?
तरीका ये है, पुराने संकेत को पहचानिए, उस इनाम की लालसा को समझिए जिसकी वजह से आप वो काम करते हैं, और फिर बीच के व्यवहार को, उस रूटीन को किसी ऐसी चीज से बदल दीजिए जो आपको वही पुराना इनाम दे सके।
अच्छा, मतलब संकेत वही रहेगा, इनाम की तलब भी वही रहेगी, बस उस तलब को पूरा करने का तरीका बदल देना है।
बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, AA। वो समझते हैं कि लोग शराब क्यों पीते हैं, हो सकता है तनाव से राहत, इनाम पाने के लिए,
या शायद अकेलेपन में थोड़ा साथ इनाम पाने के लिए।
हाँ, तो AA शराब पीने व्यवहार की जगह एक नया व्यवहार देता है। मीटिंग में जाना, किसी स्पॉन्सर से बात करना, ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेना, इससे भी वही राहत और साथ मिलता है, लेकिन एक ज्यादा सेहतमंद तरीके से। संकेत वही, इनाम वही, बस बीच का रास्ता रूटीन बदल गया।
ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, लड़ने के बजाय दिशा बदलना।
लेकिन डोएग यहाँ एक और बहुत जरूरी चीज जोड़ते हैं, विश्वास, बिलीफ। आदत को स्थायी रूप से बदलने के लिए ये मानना बहुत जरूरी है कि बदलाव मुमकिन है।
विश्वास कि हाँ, मैं बदल सकता।
हाँ, और AA जैसी जगहों पर ये विश्वास अक्सर अकेले नहीं आता, ये ग्रुप के सपोर्ट से, एक कम्युनिटी के होने से पैदा होता है। जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग भी बदल रहे हैं, तो आपको भी यकीन होने लगता है।
सही बात है, जब लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, तो हिम्मत बढ़ जाती है।
बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि आदत बदलना सिर्फ दिमाग का या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, इसमें दिल का, भावनाओं का और समाज का भी बहुत बड़ा रोल है।
ये तो हुई व्यक्तिगत आदतों की बात, लेकिन किताब में आगे संगठनों और कंपनियों की आदतों का भी जिक्र है। वहां क्या अलग होता है?
सिद्धांत वही रहता है, लेकिन स्केल बड़ा हो जाता है। यहाँ डुहेग एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, की स्टोन हैबिट्स का, मतलब प्रमुख आदतें।
की स्टोन हैबिट्स, जैसे आर्किटेक्चर में होता है की स्टोन जो पूरे आर्च को संभालता है।
बिल्कुल वही, की स्टोन आदतें वो मास्टर चाबियां हैं जो अगर बदल दी जाएं तो वो अपने आप कई और अच्छी आदतों के दरवाजे खोल देती हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें बदलने से पूरे सिस्टम में, पूरी कंपनी में या आपकी अपनी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव की एक लहर सी दौड़ जाती हैं।
कोई उदाहरण?
सबसे क्लासिक उदाहरण है पॉल ओनील का, जब वो एल्कोआ कंपनी के सीईओ बने थे। बहुत बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी थी।
हाँ, सुना है।
तो जब ओनील आए, सबने सोचा वो मुनाफे उत्पादन की बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, कर्मचारियों की सुरक्षा, वर्कर सेफ्टी।
सुरक्षा, सीईओ का पहला फोकस, ये तो अजीब है।
सबको अजीब लगा था, लेकिन उनका तर्क था कि अगर हमें सुरक्षा को नंबर वन बनाना है तो हमें पूरी कंपनी के काम करने का तरीका बदलना होगा, हमें कम्युनिकेशन बेहतर करना होगा, प्रोसेस ठीक करने होंगे, हर लेवल पर लोगों की सुननी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी।
अच्छा, तो सुरक्षा सुधारने के चक्कर में बाकी चीजें भी सुधर गईं।
एग्जैक्टली, सुरक्षा पर फोकस करने से कम्युनिकेशन सुधरा, आपसी भरोसे का माहौल बना, प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हुए, और अंत में जानते हैं क्या हुआ?
क्या?
एल्कोआ की सुरक्षा तो रिकॉर्ड स्तर पर सुधरी ही, साथ ही वो अपने इतिहास की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी भी बन गई। सुरक्षा एक कीस्टोन आदत साबित हुई।
वाह, ये तो कमाल है। मतलब अगर हम अपनी जिंदगी में भी ऐसी कोई एक दो कीस्टोन आदतें पहचान लें,
जी,
जैसे शायद रोज सुबह बस 10 मिनट एक्सरसाइज करना,
हाँ,
तो हो सकता है उसका असर हमारी एनर्जी लेवल, हमारे मूड, हमारे खाने पीने की आदतों, सब पर पड़े।
बिल्कुल, यही आइडिया है, छोटी सी दिखने वाली आदत बड़े बदलाव ला सकती है। इसी तरह किताब में स्टारबक्स का उदाहरण है।
हाँ, वो कैसे अपने कर्मचारियों को ट्रेन करते हैं?
जी, वो इच्छा शक्ति, विल पावर को एक आदत की तरह देखते हैं, एक मांसपेशी की तरह जिसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। उनका वो लैटे मेथड है ना?
हाँ, सुना है। लिसन, एक्नॉलेज,
टेक एक्शन, थैंक, एक्सप्लेन। ये मुश्किल ग्राहकों से डील करने का एक ऑटोमेटिक रूटीन है। इससे कर्मचारियों की विल पावर बचती है ताकि वो बाकी ग्राहकों को अच्छी सर्विस दे सकें।
ये भी कीस्टोन आदत जैसा ही हुआ एक तरह से, और कभी कभी बदलाव के लिए संकट भी जरूरी होता है ना?
हाँ, किताब में इसका भी जिक्र है, पावर ऑफ अ क्राइसिस। कई बार संगठन इतने जड़ हो जाते हैं अपनी पुरानी आदतों में कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तब कोई बड़ा संकट, जैसे लंदन अंडरग्राउंड में किंग्स क्रॉस स्टेशन पर लगी आग का उदाहरण दिया है, वो पुरानी व्यवस्था को हिला देता है, वो पुरानी आदतों को तोड़ता है और नई बेहतर आदतें बनाने का मौका देता है। संकट एक तरह से सिस्टम को रीसेट कर सकता।
हाँ, ये बात तो है, लेकिन कंपनियां भी हमारी आदतों का खूब फायदा उठाती हैं, जैसा टारगेट स्टोर वाले उदाहरण में था।
ओ हाँ, वो तो डरावना भी था थोड़ा, कैसे वो लोगों के शॉपिंग पैटर्न का एनालिसिस करके
ये पता लगा लेते थे कि कौन प्रेग्नेंट होने वाली है, और फिर उसी हिसाब से कूपन भेजने लगते थे।
जी, ये दिखाता है कि हमारी आदतें कितनी प्रिडिक्टेबल हो सकती हैं और कंपनियां इस डेटा का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। हमें मतलब एक जागरूक उपभोक्ता होने की जरूरत है।
बिल्कुल, और ये आदतें सिर्फ हम तक या कंपनियों तक ही सीमित नहीं हैं। डुहिक बताते हैं कि ये पूरे समाज को आकार देती हैं, सामाजिक आंदोलनों में भी इनका रोल होता है।
हाँ, ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। वो मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का उदाहरण देते हैं, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट का,
रोजा पार्क्स वाला।
हाँ, वो बताते हैं कि कोई भी सामाजिक आंदोलन आदतों के जरिए ही फैलता है और टिकता है। इसके 3 चरण होते हैं।
अच्छा, क्या है वो चरण?
पहला, आंदोलन शुरू होता है गहरे दोस्तों और करीबी जानकारों के बीच। इन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज, जैसे रोजा पार्क्स के अपने दोस्त थे।
ठीक है।
दूसरा, ये फैलता है कमजोर जान पहचान वालों के जरिए, वीक टाइज, जैसे चर्च के सदस्य, क्लब के लोग, पड़ोसी, ये लोग आंदोलन को फैलाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, आंदोलन तब टिकता है जब वो लोगों को नई सामाजिक आदतें देता है, विरोध करने का एक तरीका, जैसे बॉयकॉट, एक नई पहचान, हम सब एक है, समूह का हिस्सा होने का एहसास।
जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसक प्रतिरोध की एक नई आदत दी लोगों को।
एग्जैक्टली, उन्होंने लोगों को बताया कि जब मुश्किल आए तो क्या करना है, उन्होंने एक नया रूटीन दिया, इससे आंदोलन टिका रहा।
ये सब जानने के बाद वो बड़ा सवाल फिर से आता है, फ्री विल का। अगर हमारी इतनी सारी आदतें आदतें हैं, ऑटोमेटिक हैं, तो क्या हम उनके लिए जिम्मेदार हैं? हमारी मर्जी कहाँ है?
डुहेक का जवाब काफी सीधा है। वो कहते हैं, हाँ, हम जिम्मेदार हैं, खासकर तब जब हमें अपनी आदतों के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि उन्हें बदला जा सकता है।
मतलब इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज।
बिल्कुल, उनका कहना है कि जागरूकता जिम्मेदारी लाती है। अवेयरनेस ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपकी कोई आदत कैसे काम करती है, उसका लूप क्या है, तो फिर उसे बदलने की कोशिश करना आपका दायित्व बन जाता है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अरे ये तो मेरी आदत है, मैं क्या करूं।
ये गहरी बात है। तो ये तो हुई किताब की फिलॉसफी और साइंस। अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल बात पर। अगर किसी को अपनी कोई आदत बदलनी है तो वो क्या करे? आपने कहा था किताब में 4-स्टेप गाइड है।
जी हाँ, किताब के आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 कदमों वाला फ्रेमवर्क दिया है।
क्या है वो 4 कदम?
पहला कदम, रूटीन पहचाने, आइडेंटिफाई द रूटीन। आप असल में करते क्या हैं, उसे ठीक से समझें। जैसे मान लीजिए आप नाखून चबाते हैं, तो रूटीन है नाखून चबाना।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा कदम, इनाम के साथ प्रयोग करें,
एक्सपेरिमेंट विथ रिवॉर्ड।
जी, उस रूटीन से आपको मिलता क्या है? नाखून चबाने से क्या तनाव कम होता है, बोरियत मिटती है, या हाथों को कुछ करने को मिलता है? अलग अलग चीजें करके देखें कि कौन सी चीज असल में उस अंदरूनी लालसा को शांत करती है। शायद स्ट्रेस बॉल दबाने से भी वही राहत मिले।
ये इंटरेस्टिंग है, इनाम को समझना जरूरी है।
तीसरा कदम,
तीसरा, संकेत को अलग करें,
आइसोलेट द क्यू। वो क्या चीज है जो आपको नाखून चबाने पर ट्रिगर करती है? क्या वो कोई खास मीटिंग है, टीवी देखते समय जब आप नर्वस होते हैं? कुछ दिनों तक गौर करें कि जब आपको वो इच्छा होती है तो ठीक उससे पहले क्या हो रहा होता है। कहाँ हैं आप, समय क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन आसपास है, क्या काम कर रहे थे।
अच्छा, जासूसी करनी पड़ेगी अपनी आदत की।
बिल्कुल। और चौथा और आखिरी कदम, एक योजना बनाएं, हैव अ प्लान। जब आपको संकेत, व्यवहार और इनाम पता चल जाए तो एक स्पष्ट योजना बनाएं। जैसे जब मुझे मीटिंग में नर्वसनेस संकेत महसूस हो तो मैं नाखून चबाने पुराना व्यवहार के बजाय अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके मेज पर रखूंगा, नया व्यवहार, ताकि मेरे हाथों को कुछ करने को मिले और मैं शांत रहूं। इनाम।
वाह, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड को समझकर रूटीन को बदलना और प्लान बनाना।
हाँ, इसे कहीं लिख लें और फिर अमल करने की कोशिश करें बार बार।
ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल तरीका लगता है। इसे किसी भी आदत पर लगा सकते हैं, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, जंक फूड कम करना हो, या टालमटोल से बचना हो।
बिल्कुल, कुंजी है जागरूकता, प्रयोग और फिर एक प्लान, और हाँ, थोड़ी सी इच्छा शक्ति भी।
और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, हम इसे दूसरों की मदद करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने कहा पेरेंटिंग में।
हाँ, बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए उन्हें स्पष्ट संकेत दें, जैसे स्कूल से आकर जूते रखने की जगह एक निश्चित रूटीन बनाएं, होमवर्क का समय और सार्थक इनाम दें, तारीफ, साथ में खेलना, स्टिकर चार्ट,
या ऑफिस में भी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे हर मीटिंग के बाद अगले कदम क्या होंगे ये तय करने की आदत डालना।
बिल्कुल, ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं।
इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या कोई ऐसी बात जो आपको चौंका गई हो?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा राहत की बात ये जानना थी कि आदत बदलना सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है, जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है।
हाँ, ये बहुत उम्मीद देता है।
बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप या तो इच्छा शक्ति वाले हैं या नहीं है। आप इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है और फिर इसे बदल सकते हैं। ये एहसास कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उन्हें बदल सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है।
और आपके लिए, आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया?
मेरे लिए शायद जागरूकता की ताकत, द पावर ऑफ अवेयरनेस। सिर्फ ये जान लेना कि कोई आदत कैसे काम करती है, उसका ट्रिगर क्या है, उससे मिलता क्या है, ये अपने आप में बदलाव की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है।
हाँ, बिना समझे तो बदलेंगे कैसे?
और जैसा डोहेक कहते हैं, यही जागरूकता हमें जिम्मेदार भी बनाती है। ये हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का औजार भी देती है और उसकी जिम्मेदारी भी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक तरह की शक्ति है जो हमारे अपने हाथों में है।
बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान गोष्ठी चार्ल्स ड्वेक की द पावर ऑफ हैबिट पर।
उम्मीद है श्रोताओं को कुछ नया सीखने और सोचने को मिला होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।